श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल लेकर हाजिर है स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में यूरोप में शरणार्थी बच्चों की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप में शरणार्थियों की लहर में मुख्य रूप से बच्चे बलि चढ़ रहे हैं। सफर का रास्ता उन शरणार्थियों के लिए जो शारीरिक दृष्टि से सक्षम होते हैं कठिन होता है, और बच्चों और नौजवानों के लिए तो बहुत ही कठिन होता है। यूरोपीय संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में लगभग 10 लाख लोगों ने यूरोप पलायन किया, जिनमें 27% बच्चे और कानूनी दृष्टि से कम उम्र वाले नौजवान हैं, और इनमें आधे से कम बच्चों व नौजवानों ने बिना सरपरस्त या अभिभावक के यूरोप पलायन किया। इनमें से ज्यादातर बच्चों व नौजवानों के नाम किसी भी यूरोपीय देश में पंजीकृत नहीं है, बल्कि उन्हें लापता लोगों की श्रेणी में डाल दिया गया है। वर्ष 2015 के अगस्त के महीने के अंतिम दिनों में भूमध्य सागर के तट पर आयलन कुर्दी नामक एक 4 साल के बच्चे के बेजान शव की तस्वीर के प्रकाशन ने सीरियाई शरणार्थियों के यूरोप की ओर पलायन के मार्ग में घटने वाली त्रासदी के संबंध में दुनिया भर के लोगों की अंतरात्मा को झिझोड़ा था। आयलन कुर्दी की तस्वीर पर, जिसमें ये मासूम बच्चा साहिल की रेत पर मुंह के बल निर्जीव पड़ा हुआ दिखाई देता है, पूरी दुनिया के मीडिया और सोशल नेटवर्क की साइटों पर प्रतिक्रियाएं आईं। द इंडिपेंडेंट ने लिखा, अगर इस बच्चे की तस्वीर से शरणार्थियों के संबंध में यूरोपीय देशों के दृष्टिकोण न बदले तो फिर किसी चीज से इन देशों का दृष्टिकोण बदलेगा। अखबार लोमोंड ने इस तस्वीर को यूरोप की अंतरात्मा को झिझोड़ने वाला कहा। अखबार लोपोइन ने इस तस्वीर को, जो बहुत तेजी से सभी यूरोपीय अखबारों में छपी, यूरोप में शरणार्थियों के सामने मुंह खोले खड़ी मानव त्रासदी का प्रतीक कहा। कनाडा के राजनेता फिलिप क्वियर ने कहा, ये खेद की बात है कि शरण के लिए कोशिश करने वाले एक सीरियाई बच्चे के डूबने की तस्वीर से हमारी अंतरात्मा जागी।
कनाडा वह देश था जिसने आयलन कुर्दी के पिता की ओर से शरण के आवेदन को रद्द किया था, और वह समुद्र के मार्ग से अपने 4 सदस्यीय परिवार को यूरोप पहुंचाने की कोशिश के लिए मजबूर हुए, ताकि इस प्रकार अपने परिजनों को तुर्की में सख्त जीवन से मुक्ति दिलाएं। यह कटु घटना उस समय घटी जब वह नौका जिस पर आयलन कुर्दी के परिवार के सदस्य सवार थे, तुर्की के बदरूम शहर के नट से यूनान के कास द्वीप की ओर चली तो आयगन किस्टल क्षेत्र में पलट गई। आयलन, जो अपनी माँ और दूसरे भाइयों के साथ नाव के पलटने से मौत की नींद सो गया था, यूरोप में शरणार्थियों के सबसे बड़े संकट का प्रतीक बन गया कि यह संकट यूरोप में दूसरे विश्वयुद्ध के बाद का सबसे व्यापक संकट है।
यूरोपीय राजनेताओं ने भावनाओं की ओर इस मौज पर सवार होकर इससे राजनीतिक व प्रचारिक लाभ उठाने की कोशिश की। ब्रिटानिक प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा, जो भी इन तस्वीरों को देखेगा वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मुझ पर भी एक पिता की हैसियत से तुर्की के एक तट पर इस बच्चे के निर्जीव शरीर को देखकर बहुत असर हुआ। हम जल्द ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स ने इस घटना पर अप्रसन्नता जताते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, उसका नाम आयलन कुर्दी था। जल्द ही कुछ करना चाहिए, यूरोप को कुछ करना चाहिए। आयलन कुर्दी की तस्वीरों के छपने का असर यूरोपीय सरकारों और जनमत पर ज्यादा समय तक नहीं था। आयलन की तस्वीरों के सामने आने के बाद भूमध्य सागर के तटों पर बच्चों के निर्जीव शरीर की तस्वीरें छपी, किंतु उन पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
यूरोपीय सरकारें, यहाँ तक कि अपनी ही सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती थी, जबकि ये आंकड़े यूरोपीय सीमाओं के पीछे कैंपों में शरणार्थियों के दयनीय जीवन का चित्रण पेश कर रहे थे। जैसे ही यूरोप की ओर शरणार्थियों की लहर तेज हुई, यूरोपीय सरकारों ने सीरियाई शरणार्थियों व विस्थापितों की दयनीय स्थिति की ओर से आंखें मूंद ली और शरणार्थियों के यूरोप में प्रवेश को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाए। इन सरकारों ने सारी कोशिश शरणार्थियों के यूरोप में प्रवेश को रोकने पर केंद्रित कर दी। यूरोप पहुंचने वाले शरणार्थियों के उस वर्ग को, जो बच्चों पर आधारित है, बहुत कठिन स्थिति का सामना हुआ। यूरोपीय सरकार शरणार्थियों के इस वर्ग के संबंध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार न हुई। इस स्थिति में शरणार्थी बच्चे, खास तौर पर बिना सरपरस्त वाले बच्चे, यौन शोषण का शिकार हुए। यूरोपीय देशों में 10,000 से ज्यादा बच्चों का अपहरण हुआ और वे मानव तस्करी और यौन शोषण करने वाले गैंग के हत्थे चढ़ गए। यूरोप के जिन देशों में शरणार्थी गए हैं उनमें से स्वीडन भी है। शरणार्थियों के साथ स्वीडन के अपेक्षाकृत अच्छे व्यवहार के कारण इस देश में ज्यादा संख्या में शरणार्थियों ने शरण ली, लेकिन इस देश में भी बच्चे यौन शोषण से सुरक्षित नहीं हैं।
स्वीडन के कुछ अखबारों की रिपोर्टों के अनुसार जिन बच्चों ने बिना अभिभावक के स्वीडन में पनाह ली है उनका यौन शोषण हो रहा है। कुछ दिन पहले स्वीडन के मीडिया ने रिपोर्ट दी, दक्षिणी स्वीडन के मालमो शहर में रहने वाले शरणार्थी बच्चे मानव तस्करों के हाथ का शिकार बनते हैं जिनका यौन शोषण होता है। स्वीडन के अखबार अफ्तोन ब्लातेद इस देश के दक्षिणी भाग में स्थित एक स्कूल के प्रिंसिपल के हवाले से लिखा, मालमो के स्कूल में पढ़ने वाले शरणार्थी बच्चों और बच्चियों का स्कूल के प्रांगण से अपहरण हो रहा है ताकि उन्हें गुलाम बनाकर उनका यौन शोषण हो। स्कूल के इस प्रिंसिपल ने अपना नाम प्रकट न करने की शर्त पर बताया कि मालमो की पुलिस इस शहर के स्कूलों से शरणार्थी बच्चों के अपहरण की अनेक शिकायतों के बावजूद इस विषय को अहमियत नहीं दे रही है। दक्षिणी स्वीडन के स्कोना इलाके में मानव तस्करी के खिलाफ आंदोलन की समन्वयकर्ता लीजा ग्रीन स्वीडन के अखबार ने शरणार्थी बच्चों के यौन शोषण की पुष्टि की है। ग्रीन ने कहा कि वर्ष 2014 में हमने लगभग बच्चों के अपहरण की 40 घटनाओं की पुलिस को सूचना दी, लेकिन दक्षिणी स्वीडन में शरण लेने वाले जिन बच्चों का यौन शोषण के लिए अपहरण हुआ है उनकी संख्या इस आंकड़े से बहुत अधिक है।
फ्रांस सरकार ने अभी हाल में कैले शहर में जंगल नामक कैंप को ध्वस्त कर दिया है। इस कैंप को खत्म करने से सबसे ज्यादा जिन लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा है वह शरणार्थी बच्चे हैं। कैले शहर में शरणार्थियों को मदद करने वालों ने जंगल कैंप में बच्चों की रक्षा के उपाय के अभाव पर चिंता के बीच इस कैंप में शरण लेने वाले बच्चों के साथ यौन दुराचार की खबर दी है। इसी प्रकार उन्होंने यूरोप में शरण लेने वाले बच्चों के सामने यौन दुराचार के खतरे की भी बात कही है। ऑब्जर्वर पत्रिका ने एक रिपोर्ट में बताया कि यूनान में शरणार्थियों के लिए सुरक्षित समझे जाने वाले कैंपों में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन दुराचार हुआ है। इन बच्चों में ऐसे भी थे जिनकी उम्र 7 साल थी। ऑब्जर्वर ने आगे लिखा है कि इन कैंपों में शौचालय में बच्चों और औरतों पर हमले के कारण इन लोगों में अपने तंबुओं से निकलकर शौचालय जाने की हिम्मत नहीं है। यूनान के एक सांसद ने ऑब्जर्वर से कहा कि यह सूचना सबको शर्मिंदा करने वाली है और इन बेसहारा बच्चों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। यूरोपीय संघ की पुलिस यूरोपोल ने पहले ही यूरोप में शरण लेने वाले बच्चों के साथ यौन दुराचार होने की आशंका जताई थी। यूरोपीय सरकारों का जो मानवाधिकार की रक्षा का दावा करती है बच्चों के अधिकारों के समर्थन में बने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इन बच्चों की रक्षा के लिए उपाय अपनाना कर्तव्य है, लेकिन ये सरकारें शरणार्थी बच्चों के साथ यौन दुराचार की खबरों को अनसुना कर रही है और इस संदर्भ में जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं अपना रही है, बल्कि इन सरकारों को लगता है कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार उनके मन में डर पैदा करेगा और इस तरह वे यूरोप छोड़कर चले जाएंगे।